हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, ये प्रसिद्ध नौवां श्लोक जिसका भाग 29वां है आज। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्त्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता, जिसके ये पांच पहलू जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन, तो वंदनम के पश्चात हमने उसका संबंध सांत्वन से किया। तो वंदनम की परिपूर्णता होती है जब जो भक्त वंदन अर्पित करता है, भगवान के साथ एक वार्तालाप प्रारंभ करे, कॉन्वर्सेशन। और जो युग धर्म श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, ये श्रवण और कीर्तन। श्रवण का अर्थ है जब हम भगवान के श्रीमुख से सुनते हैं, और कीर्तन का अर्थ है कि श्रवण करने के पश्चात भगवान की महिमा जानने के पश्चात अब हम भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करते हैं अपने सर्वस्व को। तो वो है भगवान की कीर्ति का गान, कीर्तन। तो पिछली बार हमने सांत्वन लिया कि ऐसे वंदनम के पश्चात जो देवकी और वसुदेव ने भगवान के समक्ष वंदना अर्पित की, तो अब भगवान ने सांत्वना, तो ये है उनका आदान प्रदान, वंदनम, वंदनम के पश्चात सांत्वन। तो पिछली बार हमने ये कुछ स्लाइड्स लिए थे कि भगवान की परिभाषा अलग अलग प्रकार से होती है। कई धर्मों में भगवान को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले जो हैं, सो ही बिकम्स दी कॉस्मिक वेटर। और कुछ धर्मों में है कि भगवान वो केवल हमें ठीक करने के लिए है, दंडित, हमें दंडित करने के लिए। परंतु हमारी वैदिक संस्कृति में भगवान की परिभाषा हुई है कि जो हमारे माता पिता हैं, ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। भगवान स्वयं गीता में कहे हैं, माता धाता पिता महा। तो भगवान ने न केवल माता पिता बल्कि ये पूरा संबंध स्थापित किया है कि मैं हर प्रकार के संबंध से जुड़ सकता हूं। भगवान मित्र भी बनते हैं, सुहृद भी बनते हैं, भगवान भ्रातृ भी बनते हैं, भगवान माता पिता भी बनते हैं। हर एक पहलू में भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं भगवान के परिभाषा की परिपूर्णता। इसलिए जब वो हमारा सर्वस्व बन चुके हैं, चाहे हम उसे जाने या न जाने, चाहे हम पहचाने या न पहचाने, कृष्णा नोज बेटर देन मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो पिछली बार हमने ये प्रश्न लिया था कि यदि भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमारे सर्वस्व हैं, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों हैं? ये सब भगवान, ये सब समस्याएं एक तो भगवान नहीं देते, परंतु हम पैदा करते हैं जब हम भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन नहीं करते। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारे पूर्व के कर्मों को भी इस्तेमाल करते हुए ये सब हमें सिखाते हैं। प्रॉब्लम्स इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज टू डायरेक्ट अस, इंस्पेक्ट, करेक्ट, प्रोटेक्ट एंड परफेक्ट। और ये सारे उदाहरण हमने पिछली बार लिए। तो समस्याएं तो हैं, हम खरगोश की तरह आंखें बंद कर इस संसार में नहीं रह सकते। तो समस्याओं की वजह से ये दो चीजें हो सकती हैं, इट मे डिफीट यू और डेवलप यू। तो अब हम हमारा आज का सत्र प्रारंभ करते हैं, सांत्वना। भगवान, अब देखिए यहां पर हमने उदाहरण लिया है देवकी वसुदेव, उनको भगवान ने सांत्वना दी। तो सबसे स्वाभाविक प्रश्न हमारा क्या उठता है, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या सांत्वना दे रहे हैं भगवान? तो यदि सांत्वना को हम परिभाषित करें इन दो शब्दों से, अंग्रेजी के, एक है एश्योरेंस और एक है इंश्योरेंस। दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं आपको सांत्वना दूं कि आप लोग सब आज जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हो गीतामृत कार्यक्रम में, और यहां पर अभी और एक डेढ़ घंटा बैठने वाले हो, जो इतना बड़ा त्याग बलिदान आप लोग कर रहे हो, इसके बदले आपको फीस्ट दिया जाएगा। इस पूरे आपके बलिदान के बदले में आपको फीस्ट दिया जाएगा। तो मैंने डेढ़ घंटा पहले कहा आपको, इसको बोलते हैं एश्योरेंस। और इंश्योरेंस क्या है? कि केवल बोल बच्चन नहीं दें, हाँ, केवल बोले नहीं बल्कि करके दिखाएं, उसको कहेंगे इंश्योरेंस। तो हां, अक्सर ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने गीता में तो बोल दिया, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मैं तो पिछले 10 साल से अपने आप को भक्त मान रहा हूं उनका, मैं नहीं बाकी भी मानते हैं कि मैं उनका भक्त हूं, मैं मानता हूं बाकी लोग मानते हैं, पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं जिनका मैं भक्त हूं। तो उन्होंने बोल तो दिया, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, तो मैं जब विपदा में हूं, मैं जब समस्याओं से घिरा हूं, परेशानियों में हूं, तो कहां है? बड़ा बड़ा सेमिनार दिया सांत्वना के ऊपर, कहां पर है उनकी सांत्वना? तो इसलिए हमने ये मुद्दा लिया था कि एक तरफ होता है हमारा सपना, आवर ड्रीम्स, और दूसरी तरफ है भगवान की योजना। हमारा सपना, भगवान की योजना। तो आपको याद है, इच्छा नहीं है लोगों में घर से मंदिर आने की, ये सपना है। इच्छा नहीं है लोगों में घर से मंदिर आने की, परंतु ख्वाहिशें बेशक रखते हैं शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की। तो हमारी ख्वाहिशें, उनका यदि लिस्ट या केवल उनका एक चित्र बनाया जाए तो ऐसा बखूबी वो चित्र निकलेगा। तो एक तरफ है हमारे सपने और दूसरी तरफ है भगवान की योजना। जब ये हम प्लान, योजना, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान के संदर्भ में, तो समझ लेना चाहिए कि योजना कब बनती है, जब उसमें दिलो दिमाग लगाया जाता है, तब जाकर योजना बनती है। सपनों में दिलो दिमाग नहीं लगाया जाता, वो बनते हैं बिना हमारे प्रयास किए, है कि नहीं? परंतु योजना, जब हम कहते हैं कि ये योजना है, कौन सी, अलग अलग प्रकार की 5 वर्षीय योजना, यदि हम कहें ये 5 वर्षीय योजना है, तो 5 वर्षीय योजना के पीछे कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितने लोगों का। तो भगवान की यदि योजना है, तो आइए वो जो सांत्वना है, भगवान योजना के रूप में सांत्वना देते हैं हमें। तो क्या है भगवान की योजना हम बद्ध जीवों के लिए? तो सबसे पहले यदि हम ब्रह्मांडीय स्तर पर देखें, कॉस्मिक लेवल, तो अक्सर हमने ये सब कुछ सुना है, अधिआत्मिका, क्लेश, इसे कहेंगे अधिआत्मिका समस्या। तो भगवान की योजना प्रारंभ कहां से होती है? इन 3 प्रकार के क्लेशों से। तो ये 3 क्लेश जो हम इतना सुने हैं हमारे गीता कोर्सेज में, हमारे इनिशियल बेसिक लेक्चर्स में, अधिआत्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका। तो हमारे स्वयं के शरीर और मन से जो समस्याएं, अब अक्सर हम यदि अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर को इस प्रकार से ढाला गया है कि इस शरीर में इतना आराम है कि हम दिमाग लगाकर, अपनी इंद्रियों को लगाकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इतना आराम है, जैसे कि अभी रिलेटिवली हम एक आरामदायक स्थिति में हैं। हाँ, पूर्ण रूप से आराम नहीं मिल रहा होगा हमें, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शरीर में सबके कभी ना कभी, या हम कहेंगे हर समय, किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है अधि आत्मिका। तो इस समय यदि कोई कहे कोई सरदर्द नहीं हो रहा है, कोई पीठ दर्द नहीं है, किसी प्रकार का शारीरिक दर्द नहीं हो रहा है मुझे, तो हो सकता है मानसिक दर्द हो रहा हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कौन सी भाषा इस्तेमाल कर, या मन और कहीं पर किसी और चिंता में, तो या तो शरीर या मन, बहुत बार दोनों। तो थोड़ी बहुत तकलीफ इसलिए होती है ताकि धीरे धीरे यदि हम थोड़ा भी दिमाग लगाएं कि भगवान का ये जो डिजाइन है, कॉस्मिक डिजाइन, हमारे शरीर को लेते हुए, बाकी जो हमारे शरीर से संबंधित हैं उन सब को लेते हुए, जो कॉस्मिक डिजाइन को देखें तो समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान ने ये कॉस्मोस, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि का निर्माण इस प्रकार से किया है कि यहां पर हम सेटल न हो सके। क्या है? ताकि हम यहां पर सेटल न हो सके। अब हम स्वयं अनुभव करते हैं, हम कहीं अपने जीवन में अलग अलग फेजेस में, जैसे बचपन, फिर युवावस्था, फिर बाद में वो मध्य अवस्था, उसके बाद में फिर हमारी अंत लीला, आदि मध्य अंत हमारी भी होती। तो इन सब फेजेस में आप ये देखोगे कि जब बाल्यावस्था में हमने सोचा कि बस अब हम थोड़ा सेटल हो रहे हैं, है ना, स्कूल जाने में थोड़ा सेटल हुए हैं, सब में होमवर्क करने में सेटल हुए हैं, फ्रेंड्स बने हैं, तभी बाहर निकलो, अब निकलो वहां से, स्कूल से बाहर, अब दूसरी जगह। कई बार तो वो स्कूल डेज में ही बच्चे यहां वहां, पिताजी शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, कभी यहां से वहां बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि, जैसे मैं जब एयरफोर्स में था तो वहां पर हर 3-4 साल में पोस्टिंग, तो जो गृहस्थ एयरफोर्स ऑफिसर्स, तो एक ही समस्या उनकी, उनके बच्चों की, कि सेकंड स्टैंडर्ड आसाम में है तो 4th स्टैंडर्ड जम्मू कश्मीर में, तो फिर 8th स्टैंडर्ड कहां, साउथ इंडिया में, ऐसे घूम रहे सब जगह। तो वहां से अनसेटल होते हैं, फिर बाद में और कहीं सेटल, युवावस्था में, मध्य अवस्था में सेटल होने जाते हैं, फिर जॉब, आजकल तो कोई ठिकाना नहीं कि जॉब आपका रहेगा कि नहीं, पाश्चात्य देश में ऐसी समस्या है, यू नेवर नो वेदर योर वर्क विल बी द सेम, यू नेवर नो द वेदर विल बी द सेम, एंड यू नेवर नो वेदर यू कम बैक होम एंड योर वाइफ विल बी द सेम। तो ये WWW, वर्क वेदर वाइफ, तो ये अनसेटलिंग एक्सपीरियंस जो हमारा, इसको बनाए इस प्रकार से, तो बेसिकली है क्या, चाहे वो अधिभौतिक रूप में हो, बाकी मिलजुल कर हमको तकलीफ दे रहे हो, कोई मिलजुल कर न दे, फिर भूकंप हो गया, वर्षा ही नहीं हो रही, या फिर बाढ़ आ रही है, ये है अधिदैविक। तो इन सब के मिश्रण से जूझते हुए क्या साक्षात्कार आ जाना चाहिए, भगवान की सांत्वना ही है, बाय द वे टॉपिक मत भूलिए, सांत्वना ही। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं हमें, योजना क्या है उनकी, कि किराएदार हो, क्या कहते हैं, भाड़ोत्री, बसेरा मत लगाओ यहां पर अपना। तो ये है एज फार एज कॉस्मोस। फिर यदि हम देखें तो इंडिविजुअली, अब भगवान ने हमारे लिए इंडिविजुअल प्लान भी किया है, तो फिजिकल, साइकोफिजिकल और फिर स्पिरिचुअल, तो वो कौन सी योजना है भगवान की। तो शरीर को चलाने के लिए, अब देखिए, इस भौतिक संसार में आए हैं तो भौतिक शरीर तो मिलना ही है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, ये शरीर भौतिक है, यहां तक कि जो स्वर्ग के निवासी हैं उनका भी शरीर भौतिक है, हालांकि दिव्य, दिव्य नहीं कहेंगे, हमसे ज्यादा उत्कृष्ट है, परंतु फिर भी भौतिक है। तो ये फिजिकैलिटी, ये हमारा भौतिक शरीर, तो भौतिक शरीर को चलाने के लिए विषय वस्तु, ये भगवान की योजना है कि आंखों के लिए, हमारे नासिका के लिए, जिह्वा के लिए, कर्णों के लिए, त्वचा के लिए, पूरे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये हमारा शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, तो इन इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर, इसके लिए कल्पना करो, यदि विषय वस्तु ही नहीं होते तो ये इंद्रियां सब अनएम्प्लॉयड होते, देखने के लिए कुछ नहीं, सूंघने के लिए, चखने के लिए कुछ नहीं। तो हम भगवान के प्लान को देखें तो ये जो जिह्वा दी है, इस जिह्वा पर, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस जिह्वा के ऊपर इतने टेस्ट बर्ड्स हैं, है ना, स्वीट, सार, बिटर, सॉल्टी, कितने सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, इनका मिश्रण अलग अलग, एस्ट्रिंजेंट, क्या क्या हो, आयुर्वेद में सब उसका लिस्ट है। तो कल्पना कीजिए कि ये टेस्ट बर्ड्स वाला जीभ या जिह्वा हमारी जो है, परंतु कुछ टेस्ट करने के लिए है ही नहीं संसार में, तो क्या करेंगे जिह्वा का? हाँ, एक काम है वो बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये ड्यूअल पर्पस, ये कैसे, हमको जब प्यास लगती है तो जल है, हमको भूख लगती है तो अन्न है, हमको यदि अपनी आंखों को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ सुंदर देखना है तो पूरी सृष्टि में देखिए कितनी सुंदरता भी है। तो यदि ये सारे कॉम्बिनेशंस कैसे फिट हो रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ योजना होगी। फिर यदि हम साइकोफिजिकल हमारा लें कि केवल शरीर नहीं बल्कि शरीर के साथ साथ हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रवृत्तियां, इसको बोलते हैं साइकोफिजिकल। तो साइकोफिजिकल के लिए वर्णाश्रम भगवान ने, भगवान की योजना है, बहुत सुंदर योजना है। भगवान स्वयं बोले हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है परंतु गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म आजकल बहुत चल रहा है आरक्षण को लेकर, तो भगवान ने क्या कहा है, पैदाइश ही नहीं, गुण और कर्म के अनुसार। तो गुण और कर्म के अनुसार यदि किसी को गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ, उसमें जाना है तो उसके गुण कर्म के अनुसार भगवान ने वो आश्रम दिए हैं। वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण के अनुसार जो भी उसकी प्रवृत्तियां हैं वो दिया है। ये भगवान की योजना है ताकि हम वो सेंस ऑब्जेक्ट्स और वर्णाश्रम, इनको लेते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने ये सब दो चीजें क्यों दी हैं, ताकि इन दो चीजों का इस्तेमाल कर सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड वर्णाश्रम, फिजिकल एंड साइकोफिजिकल, इसका हम इस्तेमाल करें स्पिरिचुअल धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ दिए हैं। तो अब ये जो 6 पॉइंट फॉर्मूला, क्या है ये 6 पॉइंट फॉर्मूला, जानना चाहेंगे? यदि इनको हम पहचान लें तो इसमें हम ये जानेंगे कि भगवान कितने बुद्धिमानी से सिस्टमैटिकली हमारे उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, हमारे उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं। तो कलयुगी जीवों के लिए भगवान की सांत्वना, सबसे पहले अवतार। तो यदि हम भगवान के इतने विभिन्न अवतार क्यों हैं, प्रमुख तो 10 अवतार जो हम अक्सर सुनते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम जी इत्यादि, ये जो अवतार हैं भगवान के। अब यदि हम देखें हमारा साइकोफिजिकल नेचर जिसकी हमने चर्चा की, तो भगवान इतने अवतार इसलिए लेते रहते हैं ताकि हम किसी न किसी प्रकार से भगवान के किसी रूप से आकर्षित होकर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। अब हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर बहुत से हैं जो स्वाभाविक रूप से उन्हें नरसिंह भगवान के प्रति बहुत आकर्षण होता है। छोटे बच्चे तो अक्सर हम सुनते हैं, छोटे बच्चे ज्यादातर नरसिंह प्रणाम को याद कर लेते, कई बार पिताजी को याद नहीं होता, बच्चे याद कर लेते नरसिंह प्रणाम। एक बहुत सुंदर किस्सा हुआ ये ऑस्ट्रेलिया में कि एक हमारे इस्कॉन के गृहस्थ फैमिली के साथ, तो उनकी छोटी सी लड़की तकरीबन 4-5 साल की होगी, वो तो वो खेलते खेलते अपने घर के बाहर वाले आंगन में खेल रही थी गेंद से, तो खेलते खेलते उसकी गेंद जो है वो हाईवे पर गई। तो वो गई अपनी गेंद को लेने के लिए और उस समय पिताजी ने घर से देख लिया और वहां के हाईवे बहुत बड़े बड़े हाईवे होते हैं और बड़े बड़े ट्रक्स चलती रहती हैं हाई स्पीड पर, और वो ऐसी जगह थी जहां पर कोई सिग्नल विग्नल नहीं, तो वो फुल स्पीड पर, कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, चलते रहते हैं। तो एक बहुत लंबा सा ट्रेलर उसको बोलते हैं वो लोग, ट्रक का भी बाप होता है बड़ा, तो वो आया और ये पिताजी की सांस थमी की थमी रह गई जब इस पिताजी ने देखा कि इनकी बेटी वो ट्रक रोक नहीं पाया और इनकी जो बेटी है वो उड़ते हुए ट्रक से टकराते हुए उड़ते हुए वो दूसरी तरफ गिरी है। ये भागकर जब गए तो ये आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि इनकी लड़की को कुछ नहीं हुआ था, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। हॉस्पिटल लेकर गए, थोड़ी सी बेहोश थी तो हॉस्पिटल लेकर गए, तो हॉस्पिटल में जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो हॉस्पिटल वाले विश्वास नहीं किए कि ऐसे एक्सीडेंट में तो खत्म हो जानी चाहिए आपकी लड़की। तो जब उसे होश आया, उसे पूछा गया, तो उसने कहा कि पिताजी आप ही मुझे सिखाए थे कि जब भी विकट परिस्थिति आए तो नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए, तो जब मैंने वो ट्रक को आते हुए देखा तो मैंने नरसिंह प्रणाम, भगवान श्री नरसिंह देव की आरती गाना शुरू किए और वो आए मुझे बचाने के। तो पहले तो इनको विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने दिखाया, वो लड़की ने दिखाया कि उसके पीठ पर जो ये होता ना आर्मपिट्स के नीचे नाखून के निशान, नाखून के निशान उसके, जैसे कि हम नरसिंह भगवान के विषय में गाते हैं, तवकर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। तो वो अपने पिताजी से कह रही है, डॉक्टर से कह रही है, सबसे कह रही है कि अरे मैंने जब उनको पुकारा तो वो आए और उन्होंने मुझे पीछे से उठाया और मुझे वो सड़क की उस ओर रखा, उन्होंने किया ऐसा। तो फिर इनको पता चला कि स्वाभाविक रूप से उनकी ये छोटी सी लड़की ये नरसिंह भगवान से बचपन से बहुत आकर्षित रहती थी। तो देखिए भगवान चाहे वो रामचंद्र जी के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, नरसिंह भगवान प्रभु के रूप में है, इतने अलग अलग भगवान के रूप में वो आते हैं। मैं अक्सर मुझे याद आता है हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु रिक्शे में जा रहे थे बंबई में, तो रिक्शा वाला उनसे पूछता है, महाराज राम बड़ा के श्याम, बताओ, राम बड़ा की शाम। तो उन्होंने देखा उसके रिक्शे में बहुत से ऐसे फोटो लगे हुए थे, अमिताभ बच्चन के फिल्मों के पोस्टर, छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए थे रिक्शे में, लगाते ना रिक्शे में वो लोग, पूरा सजा के रखते हैं अलग अलग तरीके। तो उन्होंने वो सारे देखे कि पता चल गया कि ये शायद अमिताभ बच्चन का फैन होगा। तो उन्होंने उत्तर में उससे प्रश्न पूछा, बता डॉन बड़ा कि शराबी। शराबी बड़ा कि कुली। महाराज समझ गया, आप लोग समझ गए। तो भगवान के सारे जो अवतार हैं, भगवान हम सबको आकर्षित करने के लिए इतने विभिन्न प्रकार के, ये एक योजना है उनकी, हमारे उद्धार की योजना। अच्छा, अवतार के पश्चात अवतार भगवान के आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जहां भगवान के अवतार आते हैं, जैसे कि नासिक में राम अवतार, तो इसे धाम बना दिया। राम अवतार ने इस स्थान को क्या कर दिया, धाम बना दिया। ब्रज में श्याम सुंदर कृष्ण, उन्होंने ब्रज को धाम बना दिया। तो हम यदि देखें तो जहां कहीं पर भी भगवान के अवतार हुए, भगवान ने अपनी लीलाएं की, और जहां पर भी भगवान विचरण किए उसे धाम बनाकर चले गए। तो अब प्रश्न ये है कि अच्छा ठीक है, वो धाम बनाकर तो चले गए, परंतु अब हमारे लिए उसका क्या महत्व है? हमारे लिए ऐसा महत्व है कि वो धाम एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पर भगवान के स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस अब तक मौजूद होते हैं। जैसे मुझे याद है, कुछ साल पहले मेरी स्वयं की मौसी और मौसाजी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भयंदर में बिताया, बंबई में जो है भयंदर, तो मेरी जो माताजी हैं वो वृंदावन में रहती हैं। तो फिर अब मेरी मौसी और मौसाजी, उनकी उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, टिपिकल कलयुग में बच्चे नहीं रखते माँ बाप को, तो परेशान हो रहे थे, सास बहू टाइप वो सब सीन चल रहा था। तो फिर मेरी मौसी मेरी मदर से पूछती है कि क्या क्या करें, तो मिलने के लिए वो वृंदावन जाती। तो मदर को देखा कि वहां पे वो रह रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो उनके पति मौसा जी, मेरे मौसा जी, उनको लेकर वृंदावन आते कि कुछ अगर यहाँ पे हमको हमारे अब वृद्धावस्था गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाए वो देखने के लिए। तो ऐसे 10-15 दिन के लिए वो लोग वृंदावन गए। अब ये जिंदगी में पहली दफा वृंदावन जा रहे हैं, कौन, मेरे मौसा जी, पहली दफा। कितना उन्होंने अपना अधिकांश पूरा 50 साल उधर बहिंदर में बिता दिया, पहली दफा समय निकाला, 15 दिन निकालकर वृंदावन गए। उनको वहां पर हार्ट अटैक आया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, कहां पर, वृंदावन में। तो भगवान, देखो हो सकता है कि भगवान की क्या योजना हो कि चाहे वो 40-50 साल भयंदर के अंदर उन्होंने अपना जीवन बिताया होगा, परंतु कुछ सुकृति या अज्ञात सुकृति की वजह से अपने इतने पूरे 60-70 साल के जीवन में 15 दिन उन्होंने ब्रज में जाने का सोचा, और भगवान ने टाइमली, और ये बताया गया है कि वृंदावन में कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी सदगति तो निश्चित है। तो ये भगवान के दिव्य धामों की महिमा है। अब इन दिव्य धामों में भगवान ने अपने अर्चव्य, ये एक और भगवान की योजना कि यदि एक किसी से मिस हो जाए तो भगवान ने पूरा 6 पॉइंट फॉर्मूला दिया है कि ये बद्ध जीव कहीं ना कहीं तो अटकेगा। भगवान के इस दिव्य जाल से बच नहीं सकता। तो ये जो अर्च विग्रह, अब अर्च विग्रह देखिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से अर्च विग्रह कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे। मैं गया था रशिया। अब रशिया वो ऐसा देश जो कि कम्युनिस्ट इतने वर्षों तक, जहां पर केवल नास्तिकवाद, और वहां के जो लोग हैं, वहां की संस्कृति है, कुछ बता नहीं सकते उसके विषय में आपको हम। तो ऐसे जगह पर मैंने देखा गौर निताय के इतने सुंदर विग्रह, ऐसे ऐसे मंदिरों में गौर निताय के विग्रह। मैं हमारे राधा दामोदर, बहुत सुंदर विग्रह है इस्कॉन के प्रसिद्ध बस पार्टी के डीटी राधा दामोदर, उनको दर्शन में किया गीता नगरी अमेरिका में। तो वहां पर एक उनका किस्सा बता रहे थे एक सन्यासी कि डिवोटीज क्या करते कि बस पार्टी अर्थात बस में पुस्तकें रखकर वितरण करने के लिए, और उसमें ऑल्टर भी रहते, भगवान के अर्च विग्रह आरती वगैरह करते, और पब्लिक में जाकर वो बस खोल देते, और बस का डिजाइन भी इस प्रकार से होता कि सब लोग दर्शन कर सकें अर्च विग्रह के। तो राधा दामोदर को बस में वो लोग बुक्स के साथ ले जाते। तो एक जगह पर पुजारी ने दर्शन खोले राधा दामोदर के, इतने बड़े वो ब्रास के डीटीज हैं, बहुत सुंदर हैं। तो दर्शन खोले, आरती वो कर रहे थे, तो एक लड़का करीबन 8-10 साल का लड़का होगा, वो देख रहा है कि क्या चल रहा है अमेरिका का ये लड़का। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि बस के अंदर ये दो लोग कौन है और ये क्या कर रहा है। जैसे एक बार तो क्या हुआ कि ऐसे ही बस पार्टी में गौर निता है कि आरती पुजारी कर रहा था पब्लिक में, तो पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया कि यहां पर ये चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, ये इसने दो बच्चों को पकड़ रखा है और उनको डरा रहा है आग दिखा रहा है वो। और इतना ही नहीं, वो दोनों बच्चे बेचारे दोनों हाथ ऊपर कर सरेंडर भी किए हैं। तो ये बच्चा एक हाथ में हैमबर्गर खा रहा है। अब ये मत पूछिए कि वो क्या चीज होती है, बताने लायक चीज नहीं हो। तो एक हाथ में हैमबर्गर है, उसने देखा कि पुजारी जो है वो आरती में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो ये गया, बगल में बागीचा था, तो बागीचे से ऐसे ही जो भी कुछ फूल उगा हुआ था, पत्ते फूल, एक हाथ में वो बर्गर है, दूसरे हाथ में ये फूल तोड़कर लाया और उसने राधा दामोदर की ओर फेंका। और ये पुजारी ने, और ये जो सन्यासी बता रहे थे, ये सन्यासी ने भी अपनी आंखों से देखा कि इनके आंखों के सामने, इनके आंखों में आंसू आ गए कि वो फूल और वो पत्ते एग्जैक्टली दामोदर के चरणों पर जाकर गिरे। और तब वो सोचने लगे कि भगवान के अर्च विग्रह की कृपा देखिए कि ये लड़का अमेरिका का, कोई कुछ पता नहीं इसे कि अर्च विग्रह क्या होते हैं, ये कौन है, राधा दामोदर कौन है, आरती किसे कहते हैं, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके विषय में कुछ इसे पता नहीं। केवल राधा दामोदर की सुंदरता को देखकर उसे इतना अच्छा लगा, स्वाभाविक उसके अंदर जो भी सुप्त कृष्ण प्रेम होगा वो बाहर आया और वो जाकर उसने फूल अर्पित किया। तो ये है। अब बहुत सी ऐसे घटनाएं हम सुना सकते हैं, हम स्वयं यहां पर अनुभव कर रहे हैं कि जब से राधा मदन गोपाल जी ललिता विशाखा देवी आए हैं यहां पर, हम लोग सब वो भवरों की तरह मंडराते रहते हैं, है ना, भिन 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 करते रहते हैं भवरों की तरह, जैसे कि कमल के इर्द गिर्द जैसे भवरे मंडराते रहते हैं, तो वैसे ही हम देखते हैं कि आते हैं भगवान के मुखमंडल को देखकर, फिर चले जाते, फिर आते हैं, फिर देखते हैं, हाँ अच्छा वही भगवान का मुखमंडल, लेकिन बार 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 देखने की इच्छा होती है, बार बार देखो, हजार बार देखो, यही देखने की चीज है। केवल हजार बार देखने की चीज यही है। अब महाप्रसाद, भगवान ने सोचा हो सकता है कि कोई मेरे अवतारों से आकर्षित ना हो, हो सकता है कि कोई मेरे धाम में न जाना चाहे, हो सकता है कि कोई मेरे अर्च विग्रह पर विश्वास न करे, मुझे पत्थर माने, परंतु जब महाप्रसाद सामने आता है तो सारी समस्याएं, सारे प्रश्न, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, ट्रांसेंडेंटल हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस वो महाप्रसाद की प्लेट जब सामने आती है तो कोई क्वेश्चंस बाकी नहीं रह जाते। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान ने जो बोला है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और हम सब ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए हैं। हो सकता है कि हमने राधा मदन गोपाल जी की बांसुरी अब तक सुनी नहीं होगी, हाँ आप भी सोचते होंगे ये रोज बांसुरी लगाते हैं, बदलते रहते हैं, कभी आवाज तो सुनाई नहीं देती, वो तो बजाते हैं, हम बहरे हैं, प्रॉब्लम कहां है, फटे हुए हैं हमारे कान। तो परंतु जब महाप्रसाद, अब ये बहुत ही सुंदर श्रुतकीर्ति प्रभु ने ये किस्सा सुनाया एक बार कि श्रील प्रभुपाद के साथ उनके सर्वेंट और सेक्रेटरी प्लेन में वो लोग जा रहे थे वेनेजुएला, एक कंट्री का नाम है, तो अमेरिका से वो लोग जा रहे थे वेनेजुएला, तो फ्लाइट में तो प्रभुपाद के सर्वेंट प्रभुपाद के लिए हर समय कुछ ना कुछ स्नैक लेकर चलते थे कि प्रभुपाद अचानक कुछ मांग लें तो फ्लाइट में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जैसे ही वो लोग बैठे तो प्रभुपाद अब विंडो सीट पर, और फिर उनके बगल में उनका सर्वेंट और जो सेक्रेटरी वो आइल के उस तरफ। तो सर्वेंट ने प्रभुपाद से पूछे, श्रुतकीर्ति प्रभु से पूछे कि प्रभुपाद वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तो प्रभुपाद ने पूछा व्हाट यू हैव, तो श्रुतकीर्ति प्रभु कुरमुरा, कुरमुरा ही बोलते पफ राइस, तो कुरमुरा लाए थे। तो अब यहां पर बाकी जो सारे पैसेंजर्स, तो उनको तो फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस सब कुछ सर्व कर रही थी, जो भी अनशंट वो लोग खाते हैं वो सब दे रही थी। तो यहां पर प्रभुपाद अपना पफ राइस, तो ये प्रभुपाद के पास आई, स्वामी वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तो देखा ये तो स्वामी जी तो पहले से इनकी योजना मनी हुई है यहां पे। तो इस स्त्री ने कभी अपने जीवन में कुरमुरा नहीं देखा था, तो इसे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या चीज खा रहे हैं, ये मैंने आज दिन तक कभी देखा नहीं, चखा नहीं। तो दो तीन बार जब आके पूछा कुछ नहीं चाहिए, और देखा कि ये कुरमुरा खा रहे हैं, और प्रभुपाद एकदम रॉयल तरीके से खाते थे कि उसे ज्यादा से ज्यादा चबाते हुए, तो वो बहुत ज्यादा और क्यूरियस हो गई प्रभुपाद को खाते हुए देख। तो उसने क्या किया, वो गई और उसने प्रभुपाद की प्लेट से मुट्ठी भरकर वो कुरमुरा लिया और खा लिया, डायरेक्ट प्रभुपाद के प्लेट का महाप्रसाद। वो सर्वेंट सेक्रेटरी वो देख रहे हैं कि क्या रिएक्शन करें, और उसने खाया और उसने कहा दिस इज अमेजिंग, दिस इज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा उसको। तो ये किस्सा हुआ। बहुत साल बाद ब्राजील में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बसेस लेके जाते हैं नई नई जगहों पर, बस पार्क करते हैं, बस में रहते हैं और घरों में जाके बुक्स बांटते हैं। तो ब्राजील में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत साल बाद वो लोग घर घर जाकर भगवद गीता का वितरण कर रहे थे। तो एक घर में उन्होंने दस्तक दिया, तो महिला ने दरवाजा खोला तो ये पुस्तकें दिखाने लगी, तो ये महिला ने कहा आप लोग अंदर आइए। तो अंदर दिखाया कि प्रभुपाद की पुस्तकें, लाइब्रेरी पूरी बनी हुई है, अंदर ऑल्टर बना हुआ है पूरा, ये तो हरे कृष्णा डिवोटी है, और ये वही एयर हॉस्टेस थी, और इसने फिर पूरी स्टोरी सुनाई कि मैंने आपके जो स्वामी जी हैं वो स्वामी जी के प्लेट का महाप्रसाद डायरेक्टली वो कुरमुरा खाया था, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। अब देखो कहां की वो रहने वाली, ब्राजील की वो रहने वाली। हम लोग यहां पर नासिक में कोंडा जी का भेलबत्ता खा रहे हैं कब से, कोंडा जी क्या फर्क पड़ा। परंतु इस महिला ने, ये अब जो भक्त बन गई, इसने श्रील प्रभुपाद न केवल वो महाप्रसाद बल्कि श्रील प्रभुपाद से और उनके सर्वेंट सेक्रेटरी से वार्तालाप कर कर उसने अपने आप को जोड़ा। तो महाप्रसाद, अब इन सब के साथ अगर इन सब को सही तरीके से समझना है, किसको, अवतार, भगवान के धाम, डीटी फॉर्म, महाप्रसाद, तो भगवान ने अपने ग्रंथ भेजे, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि, ये सब भेजे कि हम इन ग्रंथों के सहारे जाने कि भगवान के अवतार, भगवान के धाम, भगवान के अर्च विग्रह, भगवान का महाप्रसाद, ये सब कुछ। तो जैसे आप लोग यहां पर हर बुधवार को आ रहे हो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के दिव्य ग्रंथ, ये जो है भगवत गीता, जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की योजना क्या है। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि ये सब भी, और भगवान के ग्रंथों के विषय में, अब इस्कॉन में अगर हम देखें, एक बार राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि किन किन तरीके से भगवत गीता ये ग्रंथ प्राप्त हुआ है दूर दराज के देशों में। तो एक देश में एक भिखारी, वो कलिंगड़ खा रहा था, कलिंगड़ वाटरमेलन, तो कलिंगड़ खा रहा था, परंतु एक कचरे के बड़े से ढेर के, जो उनके डस्टबिन्स बड़े होते हैं, उसके बगल में खा रहा था, तो उसका वो जो खाते वो फिसल गया और वो अंदर गिर गया, कचरे में गिर गया। अब ये भिखारी, तो इसको वो अच्छा लग रहा था, मीठा निकल गया था, खाना था उसको, पूरा करना था, भूख लगी थी, तो उसने हाथ डाला उसको फिर से निकालने के लिए। जब उसने हाथ डाला तो कलिंगड़ तो नहीं आया, उसके हाथ में भगवत गीता यथारूप एज इट इज, किसी ने कचरे में डाल रखी थी, तो भगवत गीता एज इट इज उसके हाथ में आई। उसने देखा ये क्या है, तो वहीं बैठ के देखने लगा क्या है ये, तो एक एक चित्र देखे उसने, चित्र विचित्र उसको लगे सब कुछ, भगवान गरुड़ के ऊपर, अलग अलग चित्र देखे, पढ़ने लगा, वहीं बैठ के पढ़ने लगा। और वहां पे एड्रेस लिखा हुआ था, मंदिर पहुंच गए। फिर एक और के विषय में महाराज बता रहे थे कि न्यू वृंदावन में बहुत से ऐसे दर्शन करने के लिए आते दर्शनार्थी। तो एक बार एक व्यक्ति आया, तो कोई था नहीं, तो महाराज को कहा गया कि आप थोड़ा इनको अटेंड करो। तो महाराज उनको बता रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सब कुछ। तो महाराज, तो ये बंदा बोलता है कि आई ऑल्सो चैंट सम हिंदू मंत्र। तो महाराज पूछे, ओ सो व्हाट मंत्र यू चैंट? तो इसने कहा, हैर कृष्ण, हैर कृष्ण, हैर राम। तो ये महामंत्र के बारे में बोल रहा था, लेकिन ये उच्चारण कैसे कर रहा था? हैर कृष्ण, क्योंकि इंग्लिश में एच ए आर ई को हैर बोलते, खरगोश होता ना एक प्रकार। तो जब राधानाथ महाराज ने सुना कि अरे ये तो महामंत्र बोल रहा है, लेकिन ये ऐसे क्यों प्रोनाउंस कर रहा है, और इसे कैसे पता चला महामंत्र के बारे में? पहली दफा ये तो वृंदावन के मंदिर में आ रहा है। तो महाराज ने पूछा कि कैसे पता चला? उसने कहा कि बहुत साल पहले मुझे ये भागवत गीता मिली, तो उसमें ये लिखा हुआ था, तो तब से मैं कर रहा हूं। तो उसे पता ही नहीं कि ये भगवत गीता के पीछे इतनी बड़ी संस्था है, और वो जिस मंदिर में खड़ा है उसी मंदिर उस संस्था का है, और ये वहां का। तो उसके कुछ पता नहीं था, इतने सालों से उसके पास थी, और वो फॉलो कर रहा है। पॉइंट क्या, महाराज कह रहे थे कि होली स्क्रिप्चर्स का प्रभाव, कोई मंदिर नहीं गया वो, कोई भक्तों से नहीं मिला, कोई अर्च विग्रह के दर्शन नहीं, और वो केवल भगवत गीता एज इट इज कहीं से उसे प्राप्त हुई, उसने चैंटिंग शुरू कर दिया, उसने चार नियम पालन शुरू कर दिया, और उसने कहा कि मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया है, मुझे पता नहीं कि ये पुस्तक कहां से मुझे आई है, किसने लिखी है, ये जो भी लिखा हुआ है मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है, आप लोग कौन हो, लेकिन जो भी कुछ है, गॉड तुसी ग्रेट हो। अब यदि होली स्क्रिप्चर्स वो अगर पल्ले नहीं पड़े, अक्सर होता है कलयुग के अंदर लोग भगवत गीता देखते हैं, अरे भगवत गीता इतने संस्कृत के ऐसे ऐसे श्लोक, संस्कृत तो आती नहीं है। तो फिर भगवान ने भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु। और कितने इस्कॉन से जुड़े, जब प्रभुपाद से, प्रभुपाद को उन्होंने देखा, जैसे प्रभुपाद एयरपोर्ट पर जब आते थे और इतने डिवोटीज, तो कई बार जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, वो लोग कहते थे दिस मैन इज गोल्डन इन कलर। प्रभुपाद को देख के बोलते थे कि ये इनका कॉम्प्लेक्शन गोल्ड के जैसा, ही इज ग्लोइंग, ऐसे करके। एक सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने प्रभुपाद को देखा चलते हुए, और वो चिल्लाने लगा, ही इज नॉट टचिंग द ग्राउंड। पता नहीं उसको क्या दिख रहा था, ही इज नॉट टचिंग द ग्राउंड। बहुत साल पहले वृंदावन में प्रभुपाद के तिरुभाव उत्सव पर प्रभुपाद के एक डिसाइपल ये पास टाइम सुना रहे थे कि वो, अब मुझे ध्यान में नहीं कि वो अपने विषय में सुना रहे थे कि या कोई माताजी थी, जो प्रभुपाद से जुड़ने से पहले तो उनके अंदर एक बहुत अद्भुत सिद्धि थी उनको जो प्राप्त हुई थी। और वो अद्भुत सिद्धि क्या थी कि वो अपने अपार्टमेंट में बालकनी से रास्ते पर जो भी चलता तो उसको डिक्टेशंस देते, कुछ इनके पास इस प्रकार की अद्भुत शक्ति थी, तो ये डिक्टेशन देते कि जाओ अभी तुम वो कागज का टुकड़ा पड़ा उठाओ उठाओ उठाओ, ऐसे डिक्टेशन देते और वो उठा लेता। उसको भी पता नहीं, वो चल रहा है, अचानक बीच में वो कागज का टुकड़ा क्यों उठाया उसने, या राइट जाओ लेफ्ट जाओ। तो उसको ये आजमाता रहता, अपनी सिद्धि को आजमाता रहता, जो भी चलते रहते पेडेस्ट्रियंस उसके ऊपर। तो ऐसे एक बार ये अपने बालकनी से ये आजमा रहा था और देखा श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ चल रहे हैं। तो उसे लगा ये तो बहुत अजीबोगरीब कोई इंसान दिख रहा है, ऐसा इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। प्रभुपाद सैफ्रॉन में शेवन हेड तिलक लगाया उनके पीछे उनके दो, तो प्रभुपाद सामने चल रहे हैं और प्रभुपाद हर समय अपने अपना चेहरा ऊपर कर कर चलते ऐसे। तो इसने सोचा चलो ये जो भी व्यक्ति है इस शख्स के ऊपर आजमाता हूं ये मेरी सिद्धि। तो डिक्टेशन शुरू किया, Whoever you are, look back, look at me, look up, look back, look at me, look up, ऐसे करके। कुछ नहीं हुआ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, शक्ति क्षीण हो रही थी इसकी। फाइनली इसने प्रार्थना के रूप में फिर वो डिक्टेशंस कहे, प्रार्थना के रूप में इसने कहा Whoever you are, Kindly look back, I will surrender unto you. जैसे उसने ये लाइन कही Kindly look back, I will surrender unto you, प्रभुपाद पीछे मुड़े और ठीक ये बालकनी में जहां खड़ा था उसके ओर देखे। ये जमीन जो भी बालकनी की जमीन सरक गई इसके नीचे से, ये भागते हुए गया और प्रभुपाद को जाके कहता है Whoever you are, I surrender unto you। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य जिन्होंने न केवल अपने उदाहरण से बल्कि अपनी वाणी से और इस पूरी संस्था से, तो हम देख सकते हैं कि ये जो 6 पॉइंट फॉर्मूला ये भगवान की सांत्वना है। कोई अगर कहे कि भगवान हमें कुछ याद रखते हैं कि नहीं, या हमें ऐसे ही यहां पर दुखी छोड़ दिया है इस विपत्ति में, नहीं, ये सारे इसलिए हमने कहा कि किसी न किसी से तो बद्ध जीव आकर्षित होगा और प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन संस्था के ओर से ये सारी चीजें हमें दे दी हैं, अवतार, होली धाम, डीटी, महाप्रसाद, होली स्क्रिप्चर्स और उनके प्रतिनिधि। तो ये है हमारा सौभाग्य, हमें केवल इस सौभाग्य को पहचानना है और इसे अपने जीवन में उतारना है। तो अब हम कुछ शास्त्र से उदाहरण लें कि भगवान ने जो विभिन्न अपने भक्तों को किस प्रकार से सांत्वना दी। तो हम देखें ब्रजवासियों को द्रौपदी, गजेंद्र, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज और अर्जुन। तो हमने कुछ विशेष उदाहरण लिए हैं कि भगवान ने इनके जीवन में इनको किन किन प्रकार से सांत्वना दी। तो हम सब जानते हैं कि विशेष जो गोवर्धन लीला हुई, ब्रजवासियों को भगवान ने एक पर्वत, गोवर्धन पर्वत के द्वारा सांत्वना दी। पूरे त्रस्त थे संवर्तक बादलों, प्रलय की वर्षा जो हो रही थी, प्रलय की वर्षा से बचाने के लिए, और त्राही त्राही सब जगह मच गया था और वो लोग भागते हुए, सारे ब्रजवासी भागते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, भगवान के समक्ष वो याचना कर रहे हैं, वंदना अर्पित कर रहे हैं। और भगवान ने सांत्वना के रूप में क्या किया, गोवर्धन पर्वत धारण किया और गोवर्धन को इस्तेमाल करते हुए भगवान ने दिखाया कि कैसे मैं सांत्वना देने के लिए मेरे ही अंश का इस्तेमाल कर सकता हूं. सो माउंटेन वॉज यूज्ड एज एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस. द्रौपदी के रूप द्रौपदी जब उस असत सभा में दुशासन दुर्योधन कर्ण इत्यादि जो द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, और इतना ही नहीं पांडव वहां पर शर्म के मारे गर्दन झुकाए हुए चुप्पी साधे हुए, भीष्म द्रोण ये सब चुप वहां पर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ द्रौपदी के विरोध में किसी को कुछ वो प्रतिकार नहीं कर रहे हैं. और उस समय द्रौपदी जो एक ऐसी सती स्त्री जिसके विषय में बताया गया है कि द्रौपदी पैदा हुई शुद्ध यज्ञ कुंड से, इसलिए द्रौपदी का एक नाम अयोनिज, कि जिसकी पैदाइश में कभी कोई खोट नहीं थी, तो जिसके पैदाइश में कोई खोट नहीं, जो पैदाइश इतनी प्योर, वो द्रौपदी को दूषित करने के लिए उस असत सभा में ये लोग सब. आज भी हम इस प्रकार की घटना, एक ऐसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार सुनने में नहीं आता, और ये द्वापर युग की बात है. तो हम सब सुने हैं कि द्रौपदी अपनी लज्जा बचाने के लिए अपने स्वयं की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है. अंत में दुशासन के सामने वो अबला स्त्री, क्या शक्ति उसके पास थी. अंत में जब भगवान श्री कृष्ण से वो याचना करती हैं, तो भगवान साड़ी के रूप में अवतरित होते हैं. जैसे ब्रजवासियों के लिए भगवान पर्वत के रूप में अवतरित हुए, द्रौपदी के लिए साड़ी के रूप में भगवान अवतरित हुए. बहुत वर्षों के पश्चात जब वो लोग वनवास में थे, तो वनवास में भगवान जब मिलने गए, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि बताइए मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर इतने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन, सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन, वहां पर भीष्म थे द्रोण थे, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, यहां तक कि आप, भगवान से पूछती हैं, यहां तक कि आप देरी से पहुंचे. तो भगवान सांत्वना देने के लिए द्रौपदी से कहते हैं, मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं देरी से पहुंचा. कौन बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. जब शिकायत लगाई द्रौपदी ने, तो भगवान ने कोई सफाई पेश नहीं की, भगवान ने अपनी गलती स्वीकार की, और फिर भगवान सांत्वना के रूप में ये तो कहे द्रौपदी से कि मुझे क्षमा करो, मुझे देरी हुई आने में. इसके साथ साथ भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए कहा कि मैं वचन देता हूं द्रौपदी तुम्हें, वचन ये देता हूं कि सूर्य चंद्र इनकी रोशनी खत्म हो सकती है किसी दिन, ये रोशनी देना बंद कर दें, सूर्य चंद्र उगना बंद हो जाएं, परंतु मेरा वचन वो निरर्थक नहीं जाएगा. और मेरा वचन ये है कि उन कुकर्मियों ने उस असत सभा में जो तुम्हारे साथ सुलूक किया, उनकी बीवियां रोएंगी उनके लिए. अब देखिए द्रौपदी, वो भी एक क्षत्राणी थी, तो ऐसे वचन भगवान के श्रीमुख से जब द्रौपदी ने सुने, तब द्रौपदी के आंखों में आंसू आए, सांत्वना मिली द्रौपदी को, और अपने आंसुओं से द्रौपदी ने भगवान की आरती की. जैसे आरती में पुजारी जो है अर्घ्य जल अर्पित करता है भगवान को, अर्च विग्रह को। तो यहां द्रौपदी पुजारी बनी और द्रौपदी ने वो अर्घ्य, वो जल कौन सा अर्पित किया? भगवान रूपी अर्च विग्रह को, अपने आंसुओं का, अश्रुओं का वो अर्घ्य अर्पित किया। और इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी। गजेंद्र जो उस विकट परिस्थिति में 1000 स्वर्गीय वर्ष से गजेंद्र जूझ रहे थे उस मगरमच्छ से, और वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, गजेंद्र भी साधारण नहीं थे, त्रिकुट पर्वत का वो मगरमच्छ। सोचिए अगर 1000 स्वर्गीय वर्ष तक उसने पकड़ रखा है गजेंद्र के एक पैर को अपने जबड़े में, तो मगरमच्छ भी कितना धैर्यशाली है, कितना पेशेंस उसके अंदर है, गिव अप नहीं कर रहा है वो। और ऐसी अवस्था में जब गजेंद्र वंदना अर्पित करते हैं, और वंदना उन्होंने तो पता है वो तो एक हाथी है, परंतु पिछले जन्म में जो उन्होंने भक्ति की, वो भक्ति जब उनको इस विकट परिस्थिति में याद आती है, तो वहां पर उसी सरोवर का एक कमल का पुष्प उनको दिखता है। तो एक तरफ ये मगरमच्छ उनके प्राणों को क्षीण कर रहा है, दूसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किन को पुकारें मदद के लिए। तो उस सरोवर में उस कमल के पुष्प को देखते हैं, अपने सूंड से उठाते हैं और आकाश की ओर उसे अर्पित करते हुए कि जो भी आप हो परम सत्य मैं नहीं जानता, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। उनकी प्रार्थना पूरी होनी थी उससे पहले भगवान सुदर्शन धारी आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने उस मगरमच्छ को काट दिया। तो गजेंद्र, अब देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सिचुएशन के अनुसार भगवान ने सांत्वना दी। अब मान लो कि गजेंद्र कमल का पुष्प लिए हुए उस विकट परिस्थिति में, इतनी पीड़ा में भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान वहां पर त्रिभंग में बांसुरी बजाने लगे, तो गजेंद्र के लिए वो सांत्वना नहीं होती। द्रौपदी के लिए उस समय की सांत्वना क्या थी? साड़ी। ब्रजवासियों के लिए उस समय की सांत्वना क्या थी? उनको एक ऐसी छतरी चाहिए थी उस संवर्तक वर्षा से बचने के लिए। कृष्णा मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू गिव सोलेस टू दीज डिवोटीज। तो हां, भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर और मुरलीधर के साथ चक्र सुदर्शन धारी भी हैं, इसलिए जो परमात्मा के रूप में भगवान चतुर्भुज में हमारे हृदय में हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो इसमें आप यदि देखो तो दो जो आयुध हैं भगवान के, शंख और पद्म, तो ये जो हैं ये भक्तों के लिए है, और चक्र और गदा ये राक्षसों के संहार के लिए। इसलिए एक आचार्य उन्होंने टीका में कहा है कि भगवान के चतुर्भुज रूप में जो चार आयुध भगवान लिए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तो राक्षसों के लिए भगवान अपना सुदर्शन इस्तेमाल करते हैं, सुदर्शन से पहले प्रहार करते हैं। यदि किसी कारण के वजह से वो बच गया सुदर्शन के प्रहार से, तो गदा से मार के उसको तमाम कर, जस्ट टू मेक श्योर। इसलिए दोनों हाथ में रखें कि एक नहीं काम करे तो दूसरा। अब भगवान के लिए तो क्या है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो किसी भी प्रकार से खत्म कर सकते। तो गजेंद्र, अब प्रहलाद महाराज, भगवान इस रूप में प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के लिए, आधे नर आधे सिंह। अब देखिए कि प्रहलाद महाराज उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था कि भगवान का इस प्रकार का अवतार मैं कराऊंगा, कोई प्रहलाद का प्लान नहीं था। और कहां से स्तंभ, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। सुखदेव गोस्वामी सुंदर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे तो ब्रह्मा जी को भी सांत्वना देनी है कि उनके वरदान विफल न जाए, नहीं तो फिर उनकी इमेज खराब होगी कि भाई उन्होंने जो इतने सारे वरदान दिए आगे चलकर कोई ब्रह्मा जी से कोई वरदान ही नहीं मांगेगा, ये कहते हुए कि भाई ये तो वरदान तो देते हैं लेकिन लास्ट मिनट पे इनके वरदान सब फेल हो जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान उनके वाक्यों को सत्य करने के लिए, क्या था उनका वाक्य कि हिरण्यकशिपु को कोई आकाश में नहीं, कोई जल में नहीं, कोई पृथ्वी पर नहीं, हिरण्यकशिपु को अंदर नहीं बाहर नहीं, किसी भी 84 लाख योनियों का कोई भी व्यक्ति कोई जीव कुछ मार नहीं सकता, ये सारे जो उसने हिरण्यकशिपु ने अपना इंश्योरेंस निकाला था। परंतु भगवान का एश्योरेंस और इंश्योरेंस क्या था प्रहलाद के प्रति, इन सब को बरकरार रखते हुए इसको मैं खत्म करूंगा। ये देखो भगवान की क्या योजना थी प्रहलाद महाराज के लिए, कि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया हिरण्यकशिपु को कि हाँ इस स्तंभ में है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तो अब देखिए भगवान को अपने ये ऐसे रूप को पूरे उस स्तंभ में डालना पड़ा, वो भी हिरण्यकशिपु के स्तंभ, सभा के स्तंभ में, और वहां से भगवान निकलते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान को जब प्रहलाद महाराज देखते हैं तो प्रहलाद महाराज तो भाव विभोर हो जाते हैं कि ऐसा अद्भुत रूप, अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम आनंद गायंत समुद्र मग्न। ये है भक्तों का भाव भगवान को जब ऐसे रूप में देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि द ओरिजिनल नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने फर्स्ट टाइम बाहर आए तो प्रहलाद महाराज कितने प्रसन्न हुए। और क्योंकि प्रहलाद महाराज इतने वर्षों से, अब उन्होंने भगवान के विषय में सुना कब, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, वहां से जो उन्होंने सुन रखा था परंतु अब तक दर्शन नहीं हुआ है, केवल श्रवण। वहां पर हिरण्यकशिपु के राज्य में कोई मंदिर नहीं था विष्णु का, प्रहलाद महाराज अभी तो हमारे प्रहलाद स्कूल होता है जिसके अंदर संडे स्कूल होता है, प्रहलाद भक्त प्रहलाद स्कूल होता है, सब छोटे छोटे बच्चों को बचपन से हमारे इस्कॉन में सब कुछ सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। परंतु प्रहलाद तो शंड अमर्क उनके स्कूल में जहां पर सब प्रकार की कुनीतियां सिखाई जाती थी, तो ऐसे स्कूल में प्रहलाद महाराज, तो सोचिए प्रहलाद महाराज कितने आतुर थे भगवान की इस सांत्वना को स्वीकार करने के लिए। तो ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूं जो कि हम सुन चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन यहां पर मुद्दा क्या चल रहा है कि भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को सांत्वना किस प्रकार से दी। और ध्रुव महाराज को सांत्वना देने के लिए एक प्लैनेट निर्माण किया, क्योंकि ध्रुव महाराज क्या चाहते थे, एक ऐसा राज्य जो कि ब्रह्मा जी से, मेरे परपिता से भी ज्यादा बड़ा हो। तो अब ऐसा तो कोई है नहीं ब्रह्मा जी से जो ऊंचा कोई राज्य किसी का है नहीं इस भौतिक संसार में। दिस इज द रेवोल्यूशनरी रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा, कि अपने सृष्टि में एक नया प्लैनेट निर्माण किया केवल ध्रुव महाराज के लिए, ध्रुव लोग सेपरेट प्लैनेट, उनके लिए, और वो ऐसा प्लैनेट कि कभी वो प्रलय में भी उसका नाश नहीं होगा। अब ध्रुव महाराज 5 वर्षीय, 5 वर्षीय थे ध्रुव महाराज। अक्सर 5 साल का बच्चा अगर अपने माता पिता से कुछ मांगता है, अगर 5 साल का बच्चा, मान लो कि आप में से अगर किसी आपका बच्चा है 5 साल का, आपको बता पापा पापा मुझे मुझे व्हाइट हाउस चाहिए, तो पापा क्या करेंगे, बेटा व्हाइट हाउस ही है अपना, सब व्हाइट ही है, अंदर से बाहर से व्हाइट वॉश कर रखा है। वो जिद पकड़ लेने, मेरे को व्हाइट हाउस चाहिए, व्हाइट हाउस कौन सा वाला, वो जहां ओबामा रहता है वो चाहिए मुझे। तो ये भौतिक संसार के पापा मम्मी क्या देंगे, हा? क्या सांत्वना देंगे उसको, बैठ जा बैठ, पहले दलिया खा ले अपना, तो या उसको ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट लाके दे देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे। परंतु ध्रुव महाराज जब उन्होंने ये मांग की, उसके साथ ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की भगवान को प्रसन्न करते हुए, तो ऐसी भीषण तपस्या ध्रुव महाराज की और ऐसा भीषण व्रत ध्रुव महाराज का कि भगवान को नीचे आना पड़ा। सांत्वना देने के लिए भगवान को, एक जैसे कि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, वैसे ही ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने एक अवतार लिया और फिर भगवान ध्रुव महाराज को सांत्वना देते हैं। सबसे पहले अब ध्रुव महाराज इतना ज्यादा वो कंफ्यूज हो गए, भगवान को देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी देखा नहीं भगवान के इतने ऐश्वर्य, ऐसे सुंदर रूप को, तो क्या बोले, दंडवत कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने अपने हाथ का शंख ध्रुव महाराज के कपोल पर लगाया। जब माथे पर शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज जो प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे, ध्रुव महाराज भी वो उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर एक ऐसा कवि भी छिपा था। जैसे हमारे कई डिवोटीज, हमारे बहुत से ब्रह्मचारी यहाँ पे कवि हैं, आपको पता नहीं है, बहुत सी लीलाएं होती हैं उनकी प्रेम भरी। तो अब हो सकता है पहले भी कविताएं रचते हों, लेकिन अभी भगवान के लिए रचते हैं, और ऐसी ऐसी सुंदर कविताएं हर बार हमारे कोई ना कोई कार्यक्रम में, उत्सव के लिए हमारे लीला प्रेम प्रभु, रणधीर कृष्ण प्रभु दोनों कंपटीशन में हैं अलग। तो कविताएं, हाँ, चित्रकला, फिर कुकिंग, सिंगिंग, ये सब कुछ हम देखते हैं कि हमने पहले कभी इन सब के विषय में कभी कल्पना भी नहीं करी कि ये सब कुछ हम कभी कर पाएंगे। बाकी सब तो छोड़ो, ये स्ट्रेट तिलक लगा पाएंगे कभी सोचा था, बिना फुटपट्टी के धोती पहन पाएंगे, तो ये सब कुछ ध्रुव महाराज के अंदर ये संचार, ये दिव्य भगवत संचार जो हुआ, जिसके वजह से उनको ऐसी सांत्वना प्राप्त हुई। फिर परीक्षित, परीक्षित महाराज जिनको 7 दिन में मरने का श्राप मिल चुका, हालांकि इसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाह रहे थे, समय के अभाव के वजह से अब हम ये इसकी चर्चा, ये जो श्रीमद् भागवत की जो सांत्वना है, ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष भगवान की सांत्वना है। परीक्षित को तो भगवान ने केवल इस्तेमाल किया, हम सब कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत, और जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता, तो इन सब के द्वारा जो सांत्वना भगवान दिए हैं, ये जो उदाहरण है कि पुस्तक के या ग्रंथ के द्वारा कह सकते हो, पर्वत के द्वारा, साड़ी के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा, यहां तक कि पूरा एक लोक, एक प्लैनेट, पूरा एक प्लैनेट। तो ये है भगवान का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान। तो यदि ये ऐसे प्रामाणिक भक्त भगवान के ऐसे योजनाएं भगवान से बनवा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम भी यदि इनके पदचिन्हों पर चलें और प्रामाणिक भगवान के भक्त बने, तो भगवान की जो योजना है हमें सांत्वना देने की, वो अवश्य ही हम पहचान पाएंगे। ऑलरेडी है, हमको केवल उसको पहचानना है। और हमको करना क्या है, वी हैव टू बिकम कोऑपरेटर्स विद कृष्णा, नॉट कॉम्पिटिटर्स। फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स व्हेन वी बिकम कोऑपरेटर्स, देन आवर लिबरेशन इज गारंटीड। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।